एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने प्रकाशन के साथ ही तहलका मचा दिया था, गिलियन फ्लिन का मनोवैज्ञानिक थ्रिलर गॉन गर्ल।
बिल्कुल, 2012 में आई ये किताब, ये सिर्फ बेस्ट सेलर ही नहीं बनी, इसने वो जो डोमेस्टिक नोआर कहते हैं, मतलब घरेलू रहस्य रोमांच, उस शैली को एक नई पहचान दी। ये उन कहानियों में से है जो आपको पकड़ लेती है, यू नो?
हाँ, और अंत तक सोचने पर मजबूर करती है। और गिलियन फ्लिन की क्या कहते हैं, लिखाई का अंदाज ही कुछ ऐसा है, तीखा, व्यंग्यात्मक और अक्सर बेचैन कर देने वाला।
सही कहा, शार्प ऑब्जेक्ट्स, डार्क प्लेसेस, उनकी पिछली किताबें भी ऐसी ही थीं, जटिल महिला किरदार और समाज पर तीखी टिप्पणी, फ्लिन की खासियत है।
हाँ बिल्कुल। वैसे ये साफ कर दें कि ऑडियोबुक की नैरेटर जूलिया वेलन है, लेखिका नहीं। वो भी कमाल की हैं, पर लेखिका फ्लिन ही हैं।
हाँ, ये जरूरी है बताना, फ्लिन किरदारों के मन के अंधेरी गलियों में ले जाने में माहिर है, और गॉन गर्ल में तो मतलब ये कला अपने चरम पर है।
तो आज की हमारी चर्चा इसी उपन्यास के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इसकी कहानी, परत दर परत खुलते रहस्य, निक और एमी के किरदारों का वो चौंकाने वाला सफर।
हाँ, और इसके मुख्य विषय भी, जैसे विवाह, पहचान का प्रदर्शन, सच का बदलता स्वरूप, इन सब पर गहराई से बात करेंगे।
बिल्कुल, तो तैयार हैं इस उलझीवी गुत्थी को सुलझाने के लिए?
पूरी तरह से।
चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के मिसूरी राज्य के काल्पनिक शहर नॉर्थ कार्थेज में।
अच्छा।
निक डन और एमी इलियट डन, उनकी शादी की पांचवी सालगिरह का दिन है। माहौल तो जश्न का होना चाहिए,
लेकिन होता नहीं है।
नहीं, निक घर लौटता है तो दरवाजा खुला पाता है और उसकी पत्नी एमी
गायब है,
और घर के अंदर का नजारा वो भी डरावना है। फर्नीचर उल्टा पड़ा है, संघर्ष के निशान।
हाँ, और जमीन पर खून के डब्बे भी, जिन्हें लगता है कि मिटाने की कोशिश की गई है। यहीं से वो रहस्य का ताना बाना बुनना शुरू होता है।
पुलिस आती है, जांच शुरू होती है, लेकिन निक का रवैया वो शुरू से ही थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, खटकता है, मतलब पत्नी गायब है और उसमें वो अपेक्षित घबराहट या दुख वो नजर नहीं आता। थोड़ा अलग थलग सा, भावना शून्य सा लगता है।
और शक की सुई तुरंत उसकी तरफ घूम जाती है। फ्लिन ने कहानी कहने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प चुना है, दोहरी कथा संरचना।
बिल्कुल, एक तरफ तो हम वर्तमान में निक को देख रहे हैं, पुलिस और मीडिया के सवालों से घिरा हुआ।
हाँ।
और दूसरी तरफ
हैं अतीत के पन्ने एमी की डायरी के रूप में।
अच्छा, एमी की डायरी।
हाँ।
और निक का बैकग्राउंड भी पता चलता है, वो पहले न्यूयॉर्क में लेखक था, नौकरी चली गई, फिर माँ बीमार हुई तो अनिच्छा से एमी के साथ अपने गृह नगर मिसूरी आ गया, अब एक बार चलाता है।
और जांच के दौरान उसके झूठ, उसकी अजीब प्रतिक्रियाएं, वो उसे और ज्यादा संदिग्ध बना देती हैं।
जबकि एमी की डायरी वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है, उसमें एमी एक प्यारी, बुद्धिमान, थोड़ी भोली सी पत्नी है।
हाँ, जो अपने पति के बदलते व्यवहार से, उसके गुस्से से, धोखे से धीरे धीरे डरने लगी है।
खास तौर पर न्यूयॉर्क की वो ग्लैमरस लाइफ छोड़कर मिसूरी के छोटे शहर में आने के बाद, वो अकेलापन, निक की उदासीनता, ये सब उसे परेशान कर रहा है, ऐसा डायरी में लगता है।
और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, निक के खिलाफ सबूत वो तो बढ़ते ही जाते हैं।
हाँ, ढेर लगने लगता है। एमी की डायरी में निक के हिंसक स्वभाव का डर दिखता है। फिर उनकी वो सालगिरह की परंपरा थी, ट्रेजर हंट,
खजाने की खोज का खेल।
हाँ, इस बार के खेल के सुराग वो अजीब तरह से निक को फंसाते हुए लगते हैं।
इतना ही नहीं, पता चलता है कि निक ने छिपकर क्रेडिट कार्ड पर भारी कर्ज लिया हुआ है,
और एमी की जीवन बीमा पॉलिसी की रकम भी बढ़वाई थी हाल ही में।
और फिर वो गवाह जो कहता है कि एमी बंदूक खरीदना चाह रही थी अपनी सुरक्षा के लिए, ये सब चीजें मिलकर तो एक बेहद डरावनी तस्वीर बनाती हैं।
और इस आग में घी डालने का काम करती है मीडिया।
हाँ, मीडिया ट्रायल।
बिल्कुल, निक देखते ही देखते राष्ट्रीय खलनायक बन जाता है, लोग उसे पत्नी हत्यारा मानने लगते हैं।
और फिर जब उसके अफेयर का खुलासा होता है उसकी एक युवा छात्रा एंडी के साथ,
बस वो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाती है।
तो पहला हिस्सा यहाँ खत्म होता है, निक गिरफ्तारी के कगार पर, और पाठक मतलब हम लोग एमी की डायरी और निक के व्यवहार के कारण लगभग मान चुके होते हैं कि निक ही दोषी है।
फ्लिन ने बड़ी चतुराई से हमें एक दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो जो उसने कहा वाली स्थिति है ना, पाठक सच और झूठ के बीच उलझ जाता है।
सही कहा, यहीं से वो सवाल भी उठते हैं विवाह की जटिलताओं पर, पहचान के मुखौटों पर,
क्या हम अपने सबसे करीबी इंसान को भी जानते हैं पूरी तरह?
बिल्कुल। और मीडिया कैसे किसी की छवि बना या बिगाड़ सकती है, ये भी साफ दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ वैसा है जैसा दिख रहा है?
यहीं पर कहानी वो मोड़ लेती है जिसने सचमुच पाठकों को हिलाकर रख दिया था। दूसरे भाग की शुरुआत, कथा का केंद्र अचानक बदलता है और हम एमी की नजरिए से कहानी देखते हैं। और फिर वो खुलासा,
एमी जिंदा है।
हाँ,
वो मिसूरी से दूर ओजाक्स के पहाड़ों में एक किराए के कैबिन में छिपी हुई है।
और इससे भी बड़ा झटका, उसकी पूरी डायरी, वो मासूमियत, वो डर,
सब झूठ, सब मनगढ़ंत, एक काल्पनिक कहानी जिसे उसने सालों पहले लिखना शुरू किया था, निक से बदला लेने की एक बहुत सोची समझी ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना के तहत।
बाप रे, ये सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये तो पाठक के भरोसे के साथ खेला गया खेल है एक तरह से।
बिल्कुल। उसका मकसद था निक को सजा देना, उसके अफेयर के लिए, उनकी वो परफेक्ट शादी की कल्पना तोड़ने के लिए। उसने बड़ी बारीकी से घर में संघर्ष का झूठा सीन बनाया।
हाँ।
निक को फंसाने के लिए जानबूझकर सबूत छोड़े, खून के धब्बे लगाए, जो उसी का खून था, उसने खुद निकाला था। और अपनी डायरी में डर और दुर्व्यवहार का ऐसा ताना बाना बुना कि निक का बचना नामुमकिन लगे।
लेकिन कहानी में एक और पेच आता है, उसकी ये परफेक्ट लगने वाली योजना में भी गड़बड़ हो जाती है।
हाँ, जिस मोटल में वो छिपी थी वहां उसके साथ रहने वाले दो अजनबी उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। अब वो अकेली है, बिना पैसे के, और अपनी ही बनाई योजना के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।
यहीं उसकी हताशा उसे एक पुराने अमीर और जुनूनी पूर्व प्रेमी डेजी कॉलिंग्स की मदद लेने पर मजबूर करती है।
और विडंबना देखिए, ये वही डेजी है जिस पर एमी ने सालों पहले पीछा करने और परेशान करने का झूठा आरोप लगाया था।
अच्छा।
हाँ, डेजी जो आज भी एमी के लिए पागल है, उसे अपने आलीशान लेक हाउस में पनाह देता है।
लेकिन ये पनाहगाह भी एक तरह का सोरे का पिंजरा बन जाती है ना?
बिल्कुल। डेजी उसे बाहरी दुनिया से काट कर रखता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। एमी सुरक्षित तो है, पर अब वो डेजी की कैदी है। अपनी कहानी का नियंत्रण, जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, वो उसके हाथ से फिसल चुका है।
यहीं पर एमी का असली चेहरा वो और ज्यादा खुलकर सामने आता है। वो सिर्फ चालाक और बदला लेने वाली ही नहीं, बल्कि एक हद तक सोशियोपैथ है।
हाँ, मतलब जिसमें सहानुभूति की गहरी कमी हो, जो अपने लक्ष्य पाने के लिए दूसरों को बस मोहरे की तरह इस्तेमाल करे। अमेजिंग एमी, वो किताबों वाला परफेक्ट किरदार, और डायरी की वो पीड़ित एमी, ये सब मुखौटे थे।
और यहीं आता है वो मशहूर कूल गर्ल मोनोलॉग, जो इस किताब का एक तरह से घोषणा पत्र बन गया है।
जरा उसके बारे में बताएं।
हाँ, वो मोनोलॉग तो तमाल का है। एमी उसमें बताती है कि कैसे उसने निक को पाने के लिए कूल गर्ल का मुखौटा पहना था। वो लड़की जो हॉट है, समझदार है, मजाकिया है, पुरुषों वाले शौक रखती है, जैसे फुटबॉल, पोकर।
कभी गुस्सा नहीं होती। हाँ, कभी गुस्सा नहीं होती, हमेशा सहमत होती है, और जिसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। ये उस सामाजिक दबाव पर एक तीखा व्यंग है जो महिलाओं पर पुरुषों की कल्पनाओं के हिसाब से ढलने के लिए डाला जाता है।
सही है।
एमी का गुस्सा इसी ढोंग को सालों तक निभाने की थकावट, उसकी निरर्थकता, उससे उबलता है।
ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। एमी के किरदार की जड़ें शायद उसकी परवरिश में भी हैं। अमेजिंग एमी किताबों ने उस पर हमेशा परफेक्ट होने का दबाव बनाया। शायद यही पूर्णतावाद और नियंत्रण की चाहत बाद में इतने बिगड़े हुए रूप में सामने आई। ये उसके कामों को सही नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं, पर उसके मनोविज्ञान को समझने में थोड़ी मदद करता है।
अब कहानी अपने तीसरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, मिसूरी में निक और उसका वो चालाक वकील है ना, टैना बोल्ट।
हाँ, टैना बोल्ट।
वो कुछ ऐसे सबूत ढूंढने लगते हैं जो एमी की कहानी पर शक पैदा करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद एमी ने ही ये सारा जाल बुना है।
लेकिन निक ये भी समझ जाता है कि सिर्फ कानूनी सबूतों से वो शायद बच ना पाए, क्योंकि एमी ने कहानी इतनी पुख्ता बनाई है, तो वो एक दूसरा रास्ता चुनता है,
जनमत की अदालत में लड़ने का, पब्लिक ओपिनियन।
हाँ, और इसके लिए वो एक बहुत बड़ा दांव खेलता है, एक लोकप्रिय टीवी टॉक शो में इंटरव्यू।
और ये उसका अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस होता है। वो कैमरे के सामने टूट जाता है, कबूल करता है कि हाँ, वो एक बुरा पति था, उसने एमी को धोखा दिया, झूठ बोला।
लेकिन साथ ही वो एमी के लिए अपने अटूट प्रेम का इजहार करता है, उसकी वापसी के लिए गिड़गिड़ाता है। वो ठीक वैसा ही पछताता हुआ रोमांटिक हीरो बन जाता है, जैसा बनने की एमी हमेशा उससे उम्मीद करती थी।
और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। डेजी के लेक हाउस में टीवी पर यह इंटरव्यू देख रही एमी निक के इस नए चालाक रूप से इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि निक आखिरकार सीख गया है, उसे अपना निक वापस चाहिए।
लेकिन डेजी, वो उसे जाने नहीं देगा।
बिल्कुल नहीं। इसलिए एमी अपनी आज़ादी और अपनी कहानी पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए अपनी अंतिम और सबसे क्रूर चाल चलती है। वो डेजी के घर में खुद को कैद किए जाने का एक भयावह सीन रचती है।
ओह।
खुद को बेरहमी से घायल करती है और फिर
डेजी की हत्या कर देती है।
हत्या।
और इसे वो आत्मरक्षा का रूप दे देती है।
हाँ, वो दावा करती है कि डेजी ने उसे अगवा कर रखा था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने आत्मरक्षा में उसे मार डाला।
और दुनिया मान लेती है।
बिल्कुल। एमी एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में घर लौटती है। मीडिया उसे सर आंखों पर बिठा लेता है, एक बहादुर महिला जो अपने अपहरणकर्ता की चंगुल से बच निकली। निक पर से तुरंत सारे आरोप हट जाते हैं, वो आजाद है।
लेकिन क्या वो सच में आजाद है?
बिल्कुल नहीं। वो अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलना शायद नामुमकिन है। वो जानता है कि एमी ने क्या किया है, वो डीजी की हत्या के बारे में जानता है, एमी के पूरे धोखे को जानता है।
निक, वो बस वो भाग्यशाली पति है जिसकी प्यारी पत्नी चमत्कारिक रूप से लौट आई है।
और फिर कहानी का सबसे ठंडा, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़, एमी खुलासा करती है कि वो गर्भवती है।
ओह।
और ये बच्चा निक का है। उसने निक के स्पर्म का इस्तेमाल किया है जो उन्होंने सालों पहले फर्टिलिटी क्लिनिक में जमा करवाया था।
ये तो अंतिम कील है। अब निक हमेशा के लिए एमी से बंध गया। बच्चे के कारण वो उसे छोड़ नहीं सकता।
हाँ, उसे अपनी बाकी जिंदगी एक खुशहाल पति और पिता का नाटक करते हुए गुजारनी होगी, अपने ही घर में उस महिला के साथ जिसे वो अब एक राक्षस के रूप में देखता है। उपन्यास का अंत उनके इसी जहरीले दिखावटी आलिंगन के साथ होता है, जनता के लिए विवाह का एक मुस्कुराता हुआ मुखौटा जिसके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है।
किरदारों का ये बदलना, या यूं कहें कि उनके असली चेहरों का सामने आना, यही इस कहानी की जान है। निक डन को ही लें। वो एक निष्क्रिय, झूठ बोलने वाले, थोड़े कायर किस्म के इंसान से शुरू होता है।
हाँ।
और कहानी के अंत तक एक चालाक कलाकार बन जाता है। वो बेहतर इंसान नहीं बनता, बल्कि अपनी पत्नी की तरह ही प्रदर्शन करने में माहिर हो जाता है। उसकी कमजोरियां हैं स्वार्थ, झूठ, बेवफाई, लेकिन उसका बदलाव मजबूरी का नतीजा है।
और एमी एलियट डन, उसका कोई चारित्रिक विकास नहीं होता जैसा आपने कहा, बस उसके असली भयावह व्यक्तित्व का पर्दाफाश होता है। वो शुरू से अंत तक कहानी की मास्टर है, कठपुतली नचाने वाली।
हाँ, जो अपने और निक के जीवन की कहानी को हर कीमत पर नियंत्रित करना चाहती है। अमेजिंग एमी का वो चमकदार मुखौटा उतरता है और हमें एक बेहद बुद्धिमान, योजनाबद्ध, बदला लेने वाली और सहानुभूति शून्य महिला नजर आती है।
सहायक किरदारों में निक की जुड़वा बहन मार्गोट गॉर्डन बहुत महत्वपूर्ण है। वो निक के लिए जमीनी हकीकत से जुड़ाव का जरिया है, उसकी सबसे बड़ी रक्षक भी और आलोचक भी।
सही। वो निक और एमी के उस दिखावटी रिश्ते के बिल्कुल विपरीत है। सच्ची, बिना शर्त वाले प्यार और ईमानदारी का प्रतीक। वो तर्क की आवाज है इस पागलपन के बीच।
और डिटेक्टिव रोंडा बोनी, मुख्य जांच अधिकारी, वो चालाक है, धैर्यवान है और तथ्यों पर ध्यान देती है। शुरू में वो निक पर शक करती है, जैसा कि सबूत इशारा करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे उसे एमी की पीड़ित वाली कहानी में भी झोल नजर आने लगता है ना?
हाँ, बिल्कुल। वो उस कहानी में सच की तलाश कर रही है जहाँ सच को लगातार, मतलब हेर फेर किया जा रहा है। उसका किरदार पाठक के संदेहों को आवाज देता है।
ये किरदार और उनकी जटिलताएं हमें उपन्यास के केंद्रीय विषयों की ओर ले जाती हैं। सबसे प्रमुख विषय तो शायद यही है, पहचान का प्रदर्शन।
हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ आइडेंटिटी। निक और एमी दोनों लगातार भूमिकाएं निभा रहे हैं। अमेजिंग एमी, कूल गर्ल, पीड़ित पत्नी, पछताता हुआ पति, ये सब किरदार है जो उन्होंने गढ़े हैं।
उपन्यास दिखाता है कि पहचान को स्थिर चीज नहीं, बल्कि अक्सर एक सावधानी पूर्वक बनाया गया प्रदर्शन होती है।
और ये प्रदर्शन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी खुद के लिए भी होता है। और जैसा एमी के मामले में हम देखते हैं, पहचान सिर्फ एक नकाब नहीं, एक हथियार भी बन सकती है। वो अपनी गढ़ी हुई पहचानों का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने, सजा देने के लिए करती है।
दूसरा बड़ा विषय है आधुनिक विवाह का निर्मम चित्रण। फ्लिन शादी के रोमांटिक आइडियल को तोड़कर उसके स्याह पक्ष को दिखाती है।
हाँ, वो छिपी हुई नाराजगी, ऊब, पावर स्ट्रगल, अधूरे सपने, संवादहीनता,
विवाह यहाँ दो लोगों के बीच प्यार का बंधन कम और अपनी अपनी कहानियों को सच साबित करने का युद्ध क्षेत्र ज्यादा लगता है।
और यहीं तीसरा विषय उभरता है, कथा की शक्ति और उसका खतरा, मतलब नैरेटिव का पावर। कहानी कौन सुना रहा है, कैसी सुना रहा है और उसे कौन मान रहा है, ये सब सच को आकार देता है।
बिल्कुल, एमी एक मास्टर कथाकार है। वो जानती है कि एक सम्मोहक कहानी कैसे गढ़ी जाती है और मीडिया वो इस कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तथ्यों की परवाह किए बिना।
ये हमारे आज के मीडिया संतृप्त युग पर एक तीखी टिप्पणी है, जहां अक्सर सबसे ज्यादा आकर्षक कहानी ही सच मान ली जाती है।
सही कहा। और चौथा महत्वपूर्ण विषय है लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं की आलोचना, जैसा हमने कूल गर्ल मोनोलॉग में देखा।
हाँ,
उपन्यास दिखाता है कि कैसे समाज, खासकर पुरुषों की अपेक्षाएं, महिलाओं पर एक खास तरह का व्यवहार करने का दबाव डालती हैं और कैसे इन निर्धारित भूमिकाओं को निभाने या तोड़ने की कोशिश विनाशकारी हो सकती हैं।
ये सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि निक के पश्चातापी पति वाले प्रदर्शन में पुरुषों पर पड़ने वाले दबावों को भी दिखाता है एक तरह से।
कहानी कहने का ढंग भी इस उपन्यास को खास बनाता है। दो अविश्वसनीय कथावाचकों का इस्तेमाल, निक का वो व्यंग्यात्मक वर्तमान काल का नजरिया
और एमी की डायरी जो शुरुआत में बिल्कुल सच्ची लगती है।
हाँ, ये पाठक को लगातार उलझन में रखता है, उसकी सहानुभूति बदलती रहती है और जब बीच उपन्यास में एमी का सच सामने आता है तो पाठक को ठगा हुआ महसूस होता है, जैसे वो भी एमी के धोखे का शिकार बन गया हो।
फ्लिन की भाषा शैली भी, वो भी काबिले तारीफ है, तेज, धारदार, हाजिर जवाबी और कभी कभी जहरीली।
हाँ, निक की आवाज में एक तरह का समकालीन व्यंग्यात्मक हास्य है, वहीं एमी की गढ़ी हुए डायरी की भाषा ज्यादा सजी समरी, साहित्यिक और बनावटी मासूमियत से भरी है। ये शैलीगत अंतर भी धोखे की एक परत है।
उपन्यास में फोरशैडोइंग, मतलब पूर्वाभास का भी बेहतरीन इस्तेमाल है। शुरू में सामान्य लगने वाले छोटे छोटे विवरण बाद में भयावह महत्व हासिल कर लेते हैं।
हाँ, जैसे वो ट्रेजर हंट, वो महज एक खेल नहीं बल्कि उनके पूरे रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। एक बाहरी तौर पे मजेदार दिखने वाला खेल जिसके नीचे एक स्याह और जोड़ तोड़ वाला मकसद छिपा है।
और प्रतीकवाद भी है, जैसे मिसिसिपी नदी या फिर घर में लगे आईने, जो लगातार किरदारों के दोहरेपन और उनके प्रदर्शनकारी स्वभाव की ओर इशारा करते हैं।
कुछ संवाद या पंक्तियां हैं जो जहन में अटक जाती हैं, जैसे उपन्यास की बिल्कुल शुरुआती पंक्तियां।
हाँ, वो पहली लाइनें, तुम क्या सोच रही हो एमी, ये सवाल मैंने अपनी शादी के दौरान सबसे ज्यादा बार पूछा है।
मुझे लगता है कि ये सवाल हर शादी पर तूफान की तरह मंडराते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कौन हो, हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, हम क्या करेंगे।
ये पंक्तियां तुरंत कहानी का मूड सेट कर देती हैं। ये न सिर्फ निक के शक और असुरक्षा को दिखाती हैं बल्कि वैवाहिक जीवन में मौजूद उस अलगाव और अपने साथी को कभी पूरी तरह न जान पाने के सार्वभौमिक भय को भी उजागर करती हैं।
ये पूरी कहानी को सिर्फ एक अपराध कथा नहीं बल्कि दो इंसानों के जटिल आंतरिक जीवन की पड़ताल बना देती है।
और फिर वो कूल गर्ल मोनोलॉग, उसका जिक्र तो बार बार आता है, उसका एक अंश, पुरुष हमेशा ऐसे निर्णायक तारीफ के रूप में कहते हैं, है ना, वो एक कूल लड़की है।
कूल गर्ल होने का मतलब है कि मैं एक हॉट, शानदार, मजाकिया महिला हूँ जो फुटबॉल, पोकर, गंदे चुटकुले पसंद करती है। कूल गर्ल्स कभी गुस्सा नहीं होती, सार यही है ना।
हाँ, बिल्कुल, ये शायद किताब का सबसे चर्चित हिस्सा है। ये सिर्फ एमी के गुस्से का इजहार नहीं बल्कि ये उस सामाजिक पाखंड पर एक जबरदस्त चोट है जो महिलाओं से एक खास तरह की सहज और कम डिमांडिंग होने की उम्मीद रखता है।
और एमी बताती है कि ये सब उसने निक को जीतने के लिए जानबूझकर किया था और अब वो ये नाटक करते करते थक चुकी है।
इस उपन्यास को पढ़ने का अनुभव ये कैसा होता है, पाठक पर क्या भावनात्मक असर छोड़ता है?
ये एक रोलर कोस्टर राइड है, सही में। आप बेचैनी महसूस करते हैं, बौद्धिक रूप से उत्तेजित होते हैं, किरदारों से सहानुभूति रखते हैं, फिर उनसे नफरत करने लगते हैं, चौंकते हैं और अंत में शायद थोड़ा डर भी जाते हैं।
हाँ, वो डर कि क्या हम अपने सबसे करीबी लोगों को भी वाकई जानते हैं, या आपको रिश्तों पर, मीडिया द्वारा बनाई गई कहानियों पर और खुद अपनी पहचान के प्रदर्शन पर सवाल उठाने को मजबूर करता है।
ये कोई आराम देने वाली किताब नहीं है, ये आपको असहज करती है, सोचने पर विवश करती है, शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
हाँ, ये रोमांटिक कल्पनाओं को तोड़ती है और रिश्तों की उस अंधेरी जटिल संभावना को सामने रखती है जहां प्यार, नफरत, नियंत्रण और प्रदर्शन सब एक साथ गुथे हुए हैं।
बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि प्रकाशन के इतने सालों बाद भी गॉन गर्ल प्रासंगिक बनी हुई है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि हमारे समय के रिश्तों, पहचान और सच के बदलते स्वरूप का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है।
तो अंत में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक रिश्तों के चमकदार मुखौटों के पीछे कितनी परतें हो सकती हैं और पहचान का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है।
हाँ, और शायद ये भी पूछने पे उकसाती है, क्या हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी जिंदगी में भूमिकाएं नहीं निभा रहे होते?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।